मीनिंगफुल लाइफ और करियर सक्सेस, ये दोनों एक हो सकती हैं। बहुत बड़ी तादाद हमारे माशरे की ऐसी है जो ज़िंदगी हार रहे हैं और पैसा जीत रहे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एम कमाना बन जाए, ये है ट्रैप। मार्केट की ज़रूरत ये है कि आप चालाकी सीख लें, आपकी ज़रूरत यह है कि आप डीप हो जाएं। اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. رب کریم ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر اس علم کو ملنے کے بعد ہمیں اس عمل کی توفیق دیجئے جو آپ کو پسند آتا ہے، اور اتنا اچھا علم اور اتنے اچھے عمل کو کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ میری گفتگو کا عنوان ہے کیریئر اینڈ دا میننگ آف لائف۔ بات یہ ہے کہ کیریئر جو ہے، میننگ آف لائف یا لائف کی میننگ فلنس کو کیریئر سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں جہاں کیریئر جو ہے وہ پوری لائف کو نگل لیتا ہے۔ لائف میں کیریئر ہوتا ہے، کیریئر میں لائف نہیں ہوتی۔ لائف کے اندر کیریئر کا ایک زون ہونا چاہیے، اور آپ کا کمال یہ ہے کہ وہ جو کیریئر ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے اس کو مینیمائز کریں۔ وہ لائف جو پوری کی پوری ایک کیریئر سے بھری ہوئی ہے، کیریئر کو نکال دیں تو لائف میں کچھ نہیں ہے، وہ لائف میننگ فل لائف نہیں ہے۔ تو لائف کی میننگ فلنس کیسے ڈیفائن ہوتی ہے اور کیریئر ایکسلنس کیسے ممکن ہوتی ہے، اس کو ہمیں آج کی اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اگر زندگی کی معنویت یا میننگ فلنس پہ غور نہ کیا جائے تو خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کیریئر کو پیارا ہو جائے۔ انسان اپنے پیاروں کو تو پیارا نہ ہو، اپنے کیریئر کو پیارا ہو جائے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پہلے ہیں اور بیٹا بعد میں ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بزنس مین پہلے ہیں اور شوہر بعد میں ہیں، گائناکالوجسٹ پہلے ہیں، بیوی بعد میں ہیں۔ ہماری یہ جو ترتیب ہے نا، یہ الٹ گئی ہے۔ ہمارا وہ رول جو ہماری لائف کی معنویت کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ رول غیر اہم نہیں ہونا چاہیے۔ میننگ فل لائف اور کیریئر سکسیس، یہ دونوں ایک ہو سکتی ہیں۔ میں یہ گفتگو کروں گا کہ یہ دونوں کس صورت میں ایک ہوں گی، اور اگر آپ نے لائف کی میننگ فلنس کو ڈیفائن نہیں کیا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ دو الگ ہوں گے۔ آپ اپنے کیریئر میں کامیاب ہوں گے لیکن زندگی میں ناکام ہوں گے۔ زندگی میں کامیاب ہونا اور کیریئر میں کامیاب ہونا، اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم دونوں جیت لیں۔ بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے کی ایسی ہے جو زندگی ہار رہے ہیں اور پیسہ جیت رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم دیکھیے، میں ہمارے معاشرے میں مجھے نظر آتا ہے کہ لوگوں نے اپنی پوری پوری زندگی، اپنے کیریئر کے 30 سال 40 سال لگائے ہیں مکان بنانے میں، مکان کو رینوویٹ کرنے میں۔ کیریئر جو ہے وہ آپ کا مکان اچھا کر سکتا ہے۔ زندگی کی جو میننگ فلنس ہے، اس کے نتیجے میں گھر اچھا ہوتا ہے۔ گھر کیریئر سے نہیں بنتا، گھر کچھ اور چیز ہوتا ہے، مکان کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بہت بڑے اور اچھے مکان میں رہتے ہیں لیکن گھر اچھا نہیں ہے ان کا۔ گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر بنتا ہے تعلق سے۔ گھر بنتا ہے جب آپ اس چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں جس کی وہ حامل ہے، جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ آپ چیزوں کو پیسوں سے نہیں ناپتے، आप खुशी और पैसा इन दोनों को एक नहीं समझते। खुशी एक अलग चीज है, पैसा एक अलग चीज है। पैसे की हमें जरूरत होती है, ठीक है, और पैसे की जरूरत हमारी कैरियर चॉइस उसका ताल्लुक है, लेकिन जिंदगी की खुशी और जिंदगी की मानवियत और जिंदगी की मकसदियत ये कुछ और चीजों से डिफाइन होती है। तो ये कुछ आज की गुफ्तगू में मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा। हमने अपनी ज़िंदगी में एक जुमला सुना होगा, यहाँ पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, हो सकता है उन्होंने ये जुमला कहा भी हो और हो सकता है उन्होंने ये जुमला सुना भी हो। और वो जुमला जो है, मैं अक्सर इस बात का तज़िया करता हूँ, वो एक फ़िक्रा जिससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी में कैरियर बिल्डिंग के सफ़र का आगाज़ होता है, हमारे माशरे में हर बच्चे की ज़िंदगी का कैरियर बिल्डिंग का सफ़र एक फ़िक्रे की समाहत या एक फ़िक्रे को, एक फ्रेज़ को सुनने से शुरू हुआ है। और वो फ्रेज़ है, हम तुम्हें इसलिए तालीम दिलवा रहे हैं ताकि तुम किसी काबिल हो जाओ, और अगर इस मकसद के लिए हमें पेट वेट भी काटना पड़ा तो कोई मसला नहीं। पहली बात तो ये कि आप तालीम की खातिर पेट काटने पे क्यों आ गए? ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये बताएंगे कितनी ख़राब बात है, पेट वेट नहीं काटते, इसके लिए एक सर्जन होता है जिसको एक सारी उसने एक स्किल्स और नॉलेज हासिल की होती है, ख़ास एक्सपर्टीज़ होती है, वो फिर ये काम करता है। आप खामखा पेट काटने पे आ गए, क्यों काट रहे हैं आप? अल्लाह को आपको जवाब देना होगा, पेट आपको इसलिए मिला था, काटना शुरू कर दें, पेट क्यों काट रहे हैं आप? यू शुड नॉट डू दिस। और हम तुम्हें इसलिए तालीम दिलवा रहे हैं ताकि तुम किसी काबिल हो जाओ, ये जो फ़िक्रा है हमारी सोसाइटी में, मैं अगर आपसे पूछूं आप में से किस किस ने ये जुमला सुना है, बोला है या सुना है, आपको पता लगेगा हमारी सोसाइटी में तकरीबन हर बच्चे के कैरियर की तरफ लपकने का आगाज़ इस जादुई जुमले की समाअत से शुरू होता है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो फ़िक्रा है ये कम अज़ कम तीन ख़तरनाक असम्पशंस पे बेस करता है। आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी जब मैं उन असम्पशंस की एनालिसिस करूँगा जिस पर फ़िक्रा बेस्ड है। हम तुम्हें इसलिए तालीम दिलवा रहे हैं ताकि तुम किसी काबिल हो जाओ। पहली असम्पशन, पहली ख़तरनाक असम्पशन जिस पर जुमला खड़ा है वो ये है कि तुम अभी किसी काबिल नहीं। ये जो चाइल्डहुड है ये बिल्कुल प्योर निकम्मापन है। यानी चिल्ड्रन आर लाइक इडियट्स, दे नो नथिंग, दे हैव नो नॉलेज, दे हैव नो स्किल, दे हैव नो एबिलिटी, दे डू नॉट हैव एनी वर्थ वाइल कॉम्पिटेंस, दे आर मोरॉन्स, दे आर ड्राफ्ट। सो वी आर एजुकेटिंग यू सो यू कुड बिकम एबल टू डू समथिंग, करंटली यू डोंट हैव एनी वर्थ वाइल एबिलिटी। द फर्स्ट डेंजरस प्रिसम्पशन बिहाइंड दिस फ्रेज, हम तुम्हें इसलिए तालीम दिलवा रहे हैं ताकि तुम किसी काबिल हो जाओ, उसका मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि तुम अभी किसी काबिल नहीं हो। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई एक बच्चा किसी काबिल नहीं होता। मैं आपको बताऊं बच्चा किस काबिल होता है, मैं आपको बताता हूं। वो सोसाइटी जहां लोग रिश्तों की अहमियत भूल जाएं, जहां लोग पैसों की वजह से चीज़ों को अहमियत दें, जहां लोग उस मामू से तो मिलना पसंद करें जिसके पास बड़ा घर और बड़ी गाड़ी है, और उस मामू को घास ना डालें जो बेरोज़गार फिर रहा है, जहां लोग खूनी रिश्तों को पैसों में तोलने की जहालत में मुब्तला हो गए हों, वहां एक इंसान के अंदर से, मेरे अंदर से, एक बच्चे के अंदर कितनी काबिलियत है मैं आपको बताता हूँ, कितना काबिल होता है। जब एक बच्चा बॉर्न होता है मेरे अंदर से फव्वारा मोहब्बत फूट पड़े, मैं किसी की खातिर अपने आराम को कुर्बान कर सकूं, मैं अपनी कन्वीनियंस को उसकी वजह से गैर अहम समझूं, मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, मैं अपनी प्रायोरिटीज रीसेट करूं उसकी खातिर, मुझे इस काबिल रखने की जिम्मेदारी कौन निभाता है? वो बच्चा निभाता है। हमारी सोसाइटी में हर बच्चा हमारे अंदर छुपी हुई मोहब्बत को और मोहब्बत करने की एबिलिटी को इनेबल करने का सामान पैदा करता है। एवरी चाइल्ड इज इनेबलर ऑफ लव। मोहब्बत को इनेबल करता है। आप देखें तो वो क्या किसी काबिल नहीं है। फिर वो मुझसे सवालात उठाता है, वो मुझसे अगर मैं टॉलरेट कर जाऊं उसके सवालात को, तो वो मेरे नॉलेज प्रोसेस को, मेरी नॉलेज डेवलपमेंट को मुमकिन करता है। अपने मासूमाना सवाल करता है मुझसे, मेरी कह लीजिए कि मेरे साथ अपना ताल्लुक जिस तरह डेवलप करता है, मेरी साइकोलॉजिकल वेलबींग की वजह बन जाता है। मेरी लाइफ में से परेशानियों को थोड़ी देर के लिए मुझे डेविएट करता है कि भाई छोड़ो और चीज़ों को ज़रा इधर भी देखो। ज़बरदस्त काबिलियत है उसमें। फिर दूसरा, उसके अंदर जो दूसरा प्रिसम्पशन है, हम तुम्हें इसलिए तालीम दिलवा रहे हैं ताकि तुम किसी काबिल हो जाओ, उसमें दूसरी ख़तरनाक प्रिसम्पशन क्या है? दूसरी ख़तरनाक इसके पीछे मफरूज़ा ये है कि तालीम का अमल जो है उसके लिए कोई वाज़े गोल होना ज़रूरी नहीं है। उसका कोई वाज़े क्लियर ऑब्जेक्टिव हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें इसलिए तालीम दिला रहे हैं ताकि तुम किसी काबिल हो जाओ, किसी भी काबिल हो जाओ। तालीम की जिम्मेदारी नहीं है कि एजुकेशन कोई अपना वर्थ वाइल गोल सेट करे, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है एजुकेशन की। किसी भी काबिल किसी को भी बना दे बस इनफ है। नहीं जनाब, तालीम को कोई जिम्मेदारी रियलाइज करने की जरूरत है। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि ये जो किसी काबिल हो जाओ के अंदर जो असल हमारी छुपी हुई ख्वाहिश है ना, वो है कि तुम कमाने के काबिल हो जाओ। हमने कमाने की काबिलियत को एजुकेशन की मेराज बना लिया। हम समझते हैं कि यानी हमारी सोसाइटी एजुकेशन जो है वो सिर्फ अर्निंग एबिलिटी को फोकस करती है, फ्यूचर के इम्कानी इकोनॉमिक बेनिफिट, इम्कानी माशी मफाद को महफूज करने के लिए एजुकेशन का प्रोसेस चलता है और कुछ भी नहीं है। वो इससे आगे सोच नहीं पाती। बल्कि हम में से एक जुमला हमने सुना होगा, जब हमारे बच्चे एजुकेशन ले लेते हैं तो फिर उनको वालदेन एक और जुमला कहते हैं। ये दो जुमले सुनते हैं बचपन में, वो पहला जुमला सुनते हैं हम तुम इसलिए तालीम दिलवा रहे हैं ताकि तुम किसी काबिल हो जाओ, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो दूसरा जुमला सुनते हैं जो क्लोजिंग, ये प्रोसेस क्लोज, उससे पता लगता है प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जॉब फिनिश्ड। वो दूसरा जुमला भी बड़ा दिलचस्प है, खुदा का शुक्र है कि तुम किसी काबिल हो गए। ये जुमला हम उस वक्त बोलते हैं जब वो पहली सैलरी लेकर आता, जब वो पहली सैलरी कमा के लाता है तो हम कहते हैं खुदा का शुक्र है आज तुम किसी काबिल हो गए। यानी किसी काबिल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छे बेटे या अच्छी बीवी या अच्छी बेटी या अच्छे पड़ोसी या अच्छे इंसान बन गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम चार पैसे कमाने के काबिल हो गए। तो हमारी बच्चों की जो ओरिएंटेशन है वो ऐसी है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि शायद ज़िंदगी का सबसे अहम काम कमाना है। कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई काम नहीं है। बल्कि बहुत से बच्चों की, जब मैंने बच्चों के साथ बैठा और मैंने पूछा कि कितना कमाना सही है और कितना, कितने से कम कमाना बुरी बात है, तो बहुत से बच्चों के जहन में एक अजीब सी बात थी, और वो मुझे इंटरेक्शन से पता लगी बच्चों के साथ। बहुत से बच्चों के जहन में यह कि जितना उनके अब्बा कमाते हैं उससे ज़्यादा उन्हें कमाना उन पर फ़र्ज है, अगर उन्होंने इससे कम कमा के दिखाया तो बड़ी रुसवाई है। तो कम से कम जितनी मेरे अब्बा की एवरेज इनकम है और जो लिविंग स्टैंडर्ड मेरे अब्बा ने मेंटेन किया है, मुझे इसको ऊपर लाना है, नीचे नहीं रखना और इसको बराबर भी नहीं चलना, ऊपर। और इस माइंडसेट के साथ वो अपने कैरियर को देखता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कमाने के लिए मिली थी। ये किस्सा आदम में इबलीस और खुदा का जो मुकालमा था वो शायद इसी वजह से था। खुदा कह रहा था कि इसको मैंने कमाने के लिए पैदा किया, इबलीस कह रहा था कि नहीं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ होंगी, तो ऐसा तो नहीं है। इसको बनाया किस लिए गया था? ज़िंदगी की मानवियत उस वक्त निकल के आती है जब हम इस पॉइंट पर गौर करते हैं कि मुझे ज़िंदगी मिली क्यों थी, मुझे ज़िंदगी मिली क्यों थी। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। जिस मकसद के लिए मुझे ज़िंदगी मिली थी उसके लिए मुझे कुछ पैसे वैसे भी चाहिए होंगे उस पर काम करने के लिए, मुझे अपना गुजारा करने के लिए कुछ मेरी नीड्स भी होंगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और कमाना ठीक है, कमाना मेरी जिंदगी के अंदर एक छोटी सी चीज है, मैं कमाता भी हूं, लेकिन मेरी जिंदगी का एम कमाना बन जाए, यह है ट्रैप, यह है प्रॉब्लम। इस लाइफ को कहते हैं मीनिंगलेस लाइफ। समझ लीजिए, अब इस जुमले की जद में अगर दादा जान आ रहे हो, अब्बू जान आ रहे हो, अम्मी जान आ रहे हो तो बहुत माजरत, लेकिन बात यह है कि अगर मैं कमाने को अपना मकसद बना लूंगा तो ये मानवियत जिंदगी की खत्म हो जाएगी, मीनिंगफुल नहीं रहेगी लाइफ। बल्कि जिंदगी का मकसद कुछ और है, कमाना ठीक है, एक जरूरत है, ठीक है, कमाता भी हूं। ये बात सबसे अहम है, हमारे बच्चों को ये बात समझने की जरूरत है। जिंदगी के अंदर कैरियर है, कैरियर जिंदगी नहीं है, ये बहुत अहम बात। दूसरी बात जो बहुत अहम है, आप में, आपने कभी हिस्ट्री में, जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, रोमन्स के बारे में पढ़ा होगा, ग्रीक के बारे में पढ़ा होगा, आपने मुख्तलिफ तहजीबों के बारे में पढ़ा होगा, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले की अरब सोसाइटी के बारे में पढ़ा होगा, और आपको पता लगा होगा कि उसमें स्लेवरी थी, स्लेव्स होते थे, और स्लेव्स दूसरों को तोहफे में भी दिए जाते थे। और बल्कि अब आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि जहेज में भी स्लेव लेके आते थे लोग, मतलब स्लेव जो है वो जहेज में भी मिलते थे, मतलब स्लेव एक ग़ुलाम होते थे। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद ग़ुलामी, स्लेवरी दुनिया से ख़त्म हो गई होगी। मैं आपको बताऊं, स्लेवरी ख़त्म नहीं हुई है, स्लेवरी की शक्ल तब्दील हुई है। आज की दुनिया में स्लेवरी की जो जदीद शक्ल है उसे कॉरपोरेट जॉब कहते हैं। हथकड़ी की भी शक्ल तब्दील हुई है, हैंडकफ जिसे हम कहते हैं, जो जदीद मॉडर्न हैंडकफ है उसे मोबाइल फोन कहते हैं। तो आप ये मत समझिए कि गुलामी खत्म हुई है, कॉर्पोरेट जॉब इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी। पॉइंट ये है, आपकी जिंदगी मीनिंगफुल उस वक्त होगी जब आप अपनी टर्म्स पर किसी जॉब को एक्सेप्ट करेंगे। और अपनी टर्म्स का मतलब यह है कि अगर आप पांच सतहों पे ताल्लुक नहीं निभा पाए, मैं अक्सर ये बात करता हूं, यानी पांच डायमेंशन है रिलेशनशिप की, और पांचों डायमेंशंस पे अगर हम अपना ताल्लुक नहीं निभा पाए तो हम बामानी जिंदगी नहीं गुजार रहे। और जिसे हम खुशी कहते हैं, खुशी का शैडो भी नहीं हमें मिला है। खुशी जो है ना, वो कोन आइसक्रीम खाना खुशी नहीं होती, कोन आइसक्रीम खुशी जो है वो कुछ और चीज़ होती है। खुशी बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है। खुशी जो है, खुशी वो है जिसकी याद भी आपको खुश कर दे, जिंदगी का वो लम्हा जिसकी याद आपको यासियत में और महरूमी में और हसरत में मुब्तला कर दे, वो खुशी नहीं है। खुशी वो है जिसकी याद भी आपको खुश कर दे, खुशी वो चीज है। और खुशी का ताल्लुक पैसे से नहीं है। तो ये जो कॉर्पोरेट जॉब है, ये बड़ी अजीब चीज है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि आपको जॉब ना मिले और आप अपना काम करें। हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं जो बाय चॉइस अपना काम करते हैं, दूसरे वो हैं जिन्हें अपना काम करवाने के लिए या तो जॉब ना मिले या बहुत बुरी मिले तो मजबूरन अपना काम करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि खुदा करे कि आप अपना काम, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और अपनी टर्म्स पर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और अपनी टर्म्स पर सेल्फ एम्प्लॉयड होने का मतलब क्या है? अपनी टर्म्स पर सेल्फ एम्प्लॉयड होने का मतलब यह है कि आप जिंदगी में जिस मकसद के लिए आपको जिंदगी मिली थी ना, आपकी ज्यादा एनर्जीज, आपका ज्यादा टाइम उस मकसद को समझने, उस मकसद को सर्व करने में लगे। कमाना वगैरह बीच में दरमियान में आता रहे, बस ठीक है, कुछ कमाते भी हैं। और पांच डायमेंशंस पे रिलेशनशिप निभाने की आपको, आपके लिए मुमकिन हो, रिलेशनशिप की पांच डायमेंशंस, पहली डायमेंशन है अपने साथ ताल्लुक, अपने साथ ताल्लुक, अपने साथ ताल्लुक उस वक्त मिलता है, उस वक्त बनता है जब आपको फ्री टाइम मिलता है, जब आपको सॉलिट्यूड मिलता है, जब आपको मोमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन मिलते हैं, जब आपको तन्हाई काटती नहीं है, जब आप अपने साथ वो वाला मुकालमा कर सकते हैं जिससे आप डीमोरलाइज ना हो, अपने आप को कंडेम ना करें, अपने आप को, यानी वो इंटरनल डायलॉग जो मेरी सेल्फ करेक्शन के प्रोसेस को इनेबल कर दे, वो अपने साथ ताल्लुक का नतीजा होता है। यानी अपने आप से मिलना, अपने आप को टटोलना, अपने साथ वक्त लगा के अपने रवैये, अपने अखलाक, अपनी सोच, अपने अमल, अपने मामलात, उसको बेहतर कर लेना। यानी एक इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने अपने साथ वक्त लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका गुस्सा कम हो गया। एक इंसान चिड़चिड़ा है, उसको अपने साथ वक्त लगाने का मौका मिला, अब वो काफ़ी उसके अंदर एक ठहराव आ गया, अपने साथ ताल्लुक, अपनी रेक्टिफिकेशन का खुद से चलने वाला प्रोसेस, अपने साथ ताल्लुक, पहली डायमेंशन। दूसरी डायमेंशन है अपनों के साथ ताल्लुक। तो अपने जो हैं वो फेसबुक पे नहीं होते भाई, अपने घर के अंदर होते हैं, उसी यानी उसी मकान को जिसमें दो चार लोग और भी रहते हैं, उनके साथ जब ताल्लुक बनता है तो वो मकान घर बन जाता है। नहीं तो वो, यानी कॉर्पोरेट जॉब ने मियाँ बीवी को रूम मेट की सतह पे गिरा दिया। ये बेड शेयरिंग करते हैं, ये रूम शेयरिंग करते हैं, ये रफीक़े हयात थोड़ी हैं, ये चार आंखें एक ही तरह से थोड़ी देखने का फन जानती हैं। ये तो हर आदमी की दो आंखें दो दो दिखाती रहती हैं चीज़ों को, ये तो कभी कुछ समझता है कभी कुछ समझता है, चार आंखें चार तस्वीरें पैदा कर रही हैं। रफीक हयात वो होता है जिसकी दो आंखें और मेरी दो आंखें, हम चारों, ये चार आंखें एक मंजर प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएं, उसे रफीक हयात कहते हैं। ऐसा कहाँ अचीव हुआ? यानी कैरियर की दौड़ ने मेरे बच्चे को मेरे दूध से महरूम कर दिया, कैरियर की दौड़ ने मेरे बच्चे को डे केयर की सैरें कराई, कैरियर की जॉब ने मेरे बच्चे को ममता की बजाय मेडता का लुत्फ दिया। कमाल नहीं है? कमाल है, मतलब हमारी जहालत की कोई इंतहा नहीं। तो ताल्लुक, पहला डायमेंशन है अपने साथ ताल्लुक, दूसरा डायमेंशन है अपनों के साथ ताल्लुक, तीसरा डायमेंशन है दूसरों के साथ ताल्लुक, चौथा डायमेंशन है अपने के साथ ताल्लुक, और पांचवा डायमेंशन है फितरत के साथ ताल्लुक। आप इसकी तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये पांच डायमेंशंस जब ताल्लुक की उस्तवार हो जाती हैं, जब मैं पांचों डायमेंशंस में रिलेशनशिप की क्वालिटी को अचीव कर लेता हूं, तो मेरी जिंदगी सही मानों में बामानी हो जाती है। जब मैं ये डिस्कवर कर लेता हूं कि मुझे जिंदगी मिली क्यों थी, और मैं पांचों लेवल्स पे, पांचों डायमेंशंस में अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी बामानी होती है। बॉस के साथ अच्छी बना सकने से ज़िंदगी बामानी नहीं होती। मार्केट की ज़रूरत यह है कि आप चालाकी सीख लें, आपकी ज़रूरत यह है कि आप डीप हो जाएं। बहुत फ़र्क है इस बात में। यानी आप चालाक हो जाएं, इससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यह है कि आप गहरे हो जाएं। गहरे कैसे होते हैं? गौर व फिक्र करने से, तदब्बुर करने से, सोचने से, अपने आप से सवाल करने से। इसकी तौफीक हमें होती नहीं। हम तो पता नहीं कहाँ भागे चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कैरियर का जो इशू है, हमें ज़रूर ये करना है कि अपने माशी मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचना है, हमें अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जिस कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है वो हासिल करनी है, लेकिन ये काम ईमान की कॉस्ट पे नहीं करना, ये काम जिंदगी की मानवियत की कॉस्ट पे नहीं करना, ये काम रिलेशनशिप की कॉस्ट पे नहीं करना। ये बात वाजे होती है। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपसे और शेयर करूँगा जो हमें समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हम ये काम कैसे करें, यानी अब हम ज़रा प्रैक्टिकल कैरियर, एक मीनिंगफुल लाइफ के साथ कैरियर कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं तीन मेजर सजेशंस हैं या तीन पॉइंट्स हैं, और फिर हर पॉइंट की थोड़ी थोड़ी डिटेल है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम यह है, वो जो तीन पॉइंट्स है, पहले मैं उन तीन पॉइंट्स की आउटलाइन बता देता हूँ, फिर उसकी मैं डिटेलिंग कर देता हूँ। पहला पॉइंट है अपने ऊपर यकीन, अपने ऊपर यकीन पैदा कीजिए। दूसरा पॉइंट है खुदा पर यकीन, और तीसरा पॉइंट है एक ऐसे कैरियर विजन को डेवलप करना जो मीनिंगफुल लाइफ को प्रोटेक्ट करे। लाइफ की मीनिंगफुलनेस जिस कैरियर विजन से डेंजर में चली जाती है उससे बचें, लाइफ की मीनिंगफुलनेस जिस कैरियर विजन से इनेबल होती है उसकी तरफ जाएं। तो तीन पॉइंट्स हैं, अपने ऊपर यकीन, खुदा के ऊपर यकीन, और एक मीनिंगफुल कैरियर विजन को डेवलप करने की कोशिश। अब इन तीनों पे थोड़ी थोड़ी सी मैं डिटेल बताता हूँ। अपने ऊपर यकीन से क्या मुराद है? जब मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि अपने ऊपर यकीन करें, तो इससे मेरी मुराद क्या होती है? हमने बहुत सुना होगा ये जुमला, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर यकीन करो। क्या मतलब है अपने ऊपर यकीन? अपने ऊपर यकीन का आसान सा मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आई कैन, आई एम और आई हैव, इन तीन फिक्रों या फ्रेजेस के साथ, यानी इन तीन आई कैन, आई एम और आई हैव के आगे कोई सेंसिबल पॉजिटिव फ्रेज ऐड कर सकने की लियाकत आप में ज़िंदा है, तो इसका मतलब है आप बिलीव अपने ऊपर करते हैं। बहुत से बच्चों का, अगर मैं आपसे एक सफ़े पे लिख के दूँ आई कैन और आगे नीचे लिखें, कितने लफ्ज इसके आगे ऐड कर सकते हैं आई कैन, तो हमारे माशरे में बच्चों की बड़ी तादाद है जो कहेगी आई कैन डू नथिंग, या वो कहेगी आई कैन मेक माई पेरेंट्स एंग्री, आई कैन मेक अ लॉट ऑफ फस। आई कैन के आगे सेंसिबल फ्रेजेस ऐड कर सकने की सलाहियत, आई एम के आगे सेंसिबल फ्रेजेस ऐड कर सकने की सलाहियत, आई एम, आई कैन, आई हैव। अगर आप 50 के करीब हर एक के आगे ऐड कर सकते हैं आई एम ब्यूटिफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वाइस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम के आगे क्या ऐड कर सकते हैं, आई कैन के आगे क्या ऐड कर सकते हैं, आई हैव के आगे क्या ऐड कर सकते हैं, और वो कितना सेंसिबल और कितना पॉजिटिव है, और जो आप ऐड कर रहे हैं उस पर यकीन कितना है आपका, आप उसे ओन कितना करते हैं। यानी ये काम किसी ट्यूटर से भी करवाया जा सकता है, मतलब ऐसा हम जैसे अपनी जिंदगी के बहुत सारे काम आउटसोर्स करके करवाते रहते हैं, तो हो सकता है कि कोई आप में से किसी की अम्मी कहें अच्छा बेटा मेरे जहन में एक साहब आ गए, मैं उनके पास तुम्हें भेजूंगी, वो तुम्हें बड़ी जल्दी 3-4 दिन में ये तैयारी करवा देंगे। मुमकिन है कि कोई फेसबुक पे इश्तार नजर आए और वो ये कहे कि भाई हम आपके बच्चे को ये काम कराते हैं, आई एम, आई कैन, आई हैव के काम करवाते हैं, आप हमारे पास भेजिए, 4 दिन में ये पूरा करवा के भेज देंगे। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ये वो चीज़ है जो बच्चा खुद से करेगा भाई। इसका मतलब है कि आप अपने आप पे बिलीव करते हैं। खुदा पे यकीन करने का क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया कि अपने पहला पॉइंट है अपने ऊपर यकीन, और उसके लिए मैंने ये आपको एक इंडिकेटर दिया। खुदा पर यकीन करने का क्या मतलब है? खुदा पर यकीन करने के कम से कम 5 मतलब हैं। यानी पहली बात मैं ये कर रहा हूं अपने ऊपर यकीन करें, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि खुदा पे यकीन करें। खुदा पे यकीन करने का पहला मतलब क्या है? खुदा पे यकीन करने का पहला मतलब ये है कि आप इस बात का यकीन करें कि खुदा छुट्टी पे नहीं जाता, वो आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है। खुदा आपके साथ है। क्या खुदा आपके साथ नहीं है? हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी वरी जो पहले पेरेंट के जहन में है और फिर बच्चे के जहन में पैदा होती है, और वो उसके लिए जो जुमला हम बोलते हैं ना, वो बड़ा ख़तरनाक जुमला है। खुदा करे कि ये जुमला हम बोलना छोड़ दें। और वो जुमला है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा आगे बनेगा क्या, तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या बनेगा। जितनी दफ़ा एक बच्चे ने अपनी माँ और अपने बाप के मुंह से ये जुमला सुना है, उतना जुल्म किया है उस माँ ने और उस बाप ने। जब भी कोई जुमला ये आपसे कहे, आप कहें क्या अल्लाह छुट्टी पे चला जाएगा? अल्लाह है, वो मेरे साथ है, मुझे अपने ऊपर यकीन है, खुदा के ऊपर यकीन है, मुझे इस जुमले से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा इंशाल्लाह। तो खुदा पर यकीन का मतलब ये है कि पहली बात कि खुदा आपके साथ है, दूसरी बात यह कि वो हर वक्त और हर जगह है। कायनात में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो ना हो, कोई वक्त ऐसा नहीं है जिसमें वो आपको देख ना रहा हो, आपके साथ ना हो। तीसरा पॉइंट यह है कि वो आपको बेसहारा नहीं छोड़ता। ये जो इस वक्त हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, बेसहारा लोगों की मदद कीजिए, बेसहारा कोई नहीं होता, ये गलत बात है। इंसान उसके सहारे को भूल कर बेसहारा बनता है, ये चॉइस उसकी अपनी है। बेसहारा उसने किसी को नहीं छोड़ा है। तीसरा, चौथा पॉइंट ये है कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, वो कादिर है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, रेगिस्तान में से दरिया निकाल सकता है, चश्मा निकाल सकता है। पांचवा पॉइंट यह है खुदा पे यकीन करने का, पांचवा पॉइंट यह है कि मेरा काम सिर्फ यह है, यानी खुदा पे यकीन के हवाले से, कि मैं मालिक को मानूं, मालिक की मानूं और उसकी रजा पे राजी रहूं। खुदा पे यकीन करने का ये मतलब है। खुदा करे कि हमें खुदा पे यकीन करने का वो फहम पैदा हो और खुदा पे हम उस तरह यकीन करें जैसे यकीन करना चाहिए, हम अपने ऊपर उस तरह यकीन करें जैसे हमें यकीन करना चाहिए। यानी वो बच्चा जिसके नंबर कम आए हैं उसका अपने ऊपर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, वो बच्चा जिसके ग्रेड अच्छे नहीं आए हैं उसका अपने ऊपर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चाहे आपके ग्रेड अच्छे हैं या बुरे हैं, आपकी परसेंटेज कम है या ज़्यादा है, आप पास हैं या फेल हैं, आप अपने ऊपर यकीन करें। दूसरी बात यह कि आप खुदा पे यकीन करें, चाहे आपके अमल जैसा भी है, आप अपने आप को ठीक करें। और खुदा पे यकीन करने की पांच बातें मैंने बयान कर दी, वो मेरे साथ है, हर वक्त हर जगह है, मुझे बेसहारा नहीं छोड़ता, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और मेरा काम सिर्फ मालिक को मानना, मालिक की मानना और उसकी रजा पे राजी रहना। अगर मुझे ये काम आ गया तो इंशाअल्लाह ताला ये दो काम होगा। अब तीसरे काम पे आते हैं कि कैरियर विजन, मीनिंगफुल कैरियर विजन कैसे बनेगा। मीनिंगफुल कैरियर विजन के लिए मेरे पास कुछ और सजेशंस हैं कि एक ऐसा कैरियर विजन जिससे मेरी लाइफ की मानवीय डिस्टर्ब ना हो, मैं जॉब करूं गुलामी ना करूं। यानी बहुत से लोगों से उनके बॉस ने उनकी जिंदगी खरीद ली है अच्छे पैसों के एवज। अल्लाह से तौबा करें ऐसी ज़िंदगी अल्लाह हमें ना दे, ये बहुत परेशान कुन बात है। यानी उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, वो जॉब ऐसे कर रहे हैं जैसे इबादत करनी चाहिए। इससे बचने की ज़रूरत है। ये आप तो अभी अभी इस फील्ड में नहीं आए ना, अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि आपके जहन में ये बात क्लियर हो इंशाल्लाह, ठीक है। तो मीनिंगफुल कैरियर विजन कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ सजेशन। सबसे पहली बात, आपको ये समझना होगा कि पर्पस ऑफ क्रिएशन और एम ऑफ लाइफ दो अलग चीज़ें हैं जिनको एक करना मेरी शऊरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर्पस ऑफ लाइफ ये है मुझे ज़िंदगी मिली क्यों है, पर्पस ऑफ क्रिएशन ये है कि मुझे ज़िंदगी मिली क्यों है, एम ऑफ लाइफ ये है कि मैं इस लाइफ में करना क्या चाहता हूँ। मैंने अपना एम ऑफ लाइफ बना लिया कि मुझे कैनेडा में इमिग्रेशन हासिल करनी है, मैंने अपना एम ऑफ लाइफ ये बना लिया कि मुझे इतना माल जमा करना है, ये मैंने अपना एम ऑफ लाइफ बना लिया। पर्पस ऑफ क्रिएशन और एम ऑफ लाइफ के अंदर अगर कनेक्शन टूट जाए तो जिंदगी बेमानी हो जाती है। मुझे पर्पस ऑफ क्रिएशन से जोड़कर अपना एम ऑफ लाइफ सेट करना है, ये पहली बात है। दूसरी बात यह कि मुझे अपने इंटरेस्ट्स पहचानने हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम यह हो गया है, हमारी एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों को उनके इंटरेस्ट से बेगाना कर दिया। आप बच्चों से पूछें, बेटा आपके कोई इंटरेस्ट हैं? तो बहुत से बच्चों का इंटरेस्ट है ज्यादा नंबर लाना, और कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा। इंटरेस्ट किसे कहते हैं? इंटरेस्ट जो है वो काम जो आपने पिछले 48 आवर्स में अपने शौक से किया है, किसी दबाव के तहत नहीं किया, उस काम को करते हुए आपकी क्रिएटिविटी, आपका छुपा हुआ टैलेंट, आपकी जहानत बरोएकार लाई गई है, यूज हुई है आपकी इंटेलिजेंस, वो है आपका शौक, आपका इंटरेस्ट। और अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, अपने इंटरेस्ट ढूंढिए, आपका इंटरेस्ट क्या है। टाइम्स मैगजीन की 10 साल पहले की रिपोर्ट है, और रिपोर्ट यह है इस वक्त दुनिया में 3 में से एक आदमी, यानी 10 साल पुरानी रिपोर्ट है, हर 3 में से एक आदमी जो जॉब कर रहा है पूरी दुनिया में, वो रोजाना 1 घंटा स्पेयर करता है इस काम के लिए कि वो दूसरी जॉब सर्च करे। यानी 33% लोग दुनिया में अपने 1 घंटा रोजाना स्पेयर करते हैं टू सर्च अनदर टाइप ऑफ जॉब, और उसकी वजह यह कि जो जॉब वो कर रहे हैं वो जॉब उस जॉब से वो मुतमईन नहीं हो रहे, वो उनके उसमें वो बोर हो रहे हैं, उसमें वो उकता रहे हैं, उससे वो फेड अप हो गए हैं, उसमें उन्हें मजा नहीं आ रहा, इसलिए कि वो उनके इंटरेस्ट से मैच नहीं करती। इस वक्त के तर्जिए, ये 10 साल पुराना तर्जिया, इस वक्त की सूरत हाल ये कि 3 में से 2 लोग ऐसा काम कर रहा, और बहुत से केसेस में बॉस खुद भी यही काम कर रहा। मैं अजीब सी बात बता रहा हूं, मतलब आपको पता लगेगा कि सभी ये काम कर रहे हैं। यानी मसला ये है कि हमारा एक है हमारा डिजाइन, डिजाइन कहते हैं मेरी अपनी, यानी जिस तरह के टैलेंट मेरे अंदर हैं, जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी टाइप है, जिस तरह की मेरी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, जिस तरह की मेरे, यानी जो मेरी मेरी खास किस्म का मेरा लर्निंग स्टाइल, एक खास किस्म की मेरी पर्सनालिटी टाइप, ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि मेरी विशेस क्या हैं। बहुत सारे लोग जो अपने आप को नहीं जानते, बहुत से लोगों की विश उनके डिजाइन के अकॉर्डिंगली नहीं होती, और विश और इंटरेस्ट में फर्क होता है। हमारी इस वक्त मैं जब बच्चों को देखता हूं कैरियर चूज करने पे, तो वो 5 बड़ी रीजंस हैं जिन पर वो कैरियर चूज करते हैं। जब आप देखते हैं ये कैरियर तुमने क्यों चूज किया, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तुमने क्यों इसमें दाखिला क्यों लिया तुमने, तो 5 में से 1 वजह लोग बताते हैं। पहली वजह यह क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें यह समझाया था। बड़ों में सीनियर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, अम्मी अब्बू भी हो सकते हैं। अम्मी अब्बू की जिद की वजह से ये बच्चा वो काम कर रहा है जो इसे करना नहीं चाहिए उसूली तौर पर, या फिर मार्केट में एक ट्रेंड चला हुआ है सब ये काम कर रहे हैं लिहाजा मैं भी ये काम कर रहा हूं, या फिर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, विश थी मेरी, विश। विश इज नॉट इंटरेस्ट। योर विश एंड योर इंटरेस्ट कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स। आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं, इसलिए मैंने कर लिया, या इसलिए चूज किया क्योंकि इस पेशे में पैसे बहुत हैं, इस करियर में पैसा बहुत है, माल बहुत है। और 5वीं रीजन ये है कि सोसाइटी में इस करियर के लोगों को जो पावर और पोजीशन मिलती है, जो स्टेटस मिलता है, मुझे उस वजह से मैंने ये करियर चूज किया। और 5 बड़ी रीजंस हमारी सोसाइटी में बन गई, और 5ों गलत रीजंस हैं। आपको कोई करियर क्यों चूज करना है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट, अगर एक इंसान अपने आप को ना जानता हो, ठीक से उसने अपने साथ वक्त ना गुजारा हो, उसका अपने साथ ताल्लुक ना हो, उसने अपने आप को ठीक से ना समझा हो, मैं ऐसा क्यों हूं जैसा हूं, उसने इस पे वक्त ना लगाया हो, तो इसका इम्कान मौजूद है कि उसकी विश और उसके इंटरेस्ट कुछ और हों, वो अपने इंटरेस्ट को जाने ही ना, वो अपने विश को फॉलो करें, यानी उसकी ख्वाहिश है। ख्वाहिश किस बेसिस पर है? उसने किसी को देखा था, उसको देख के उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो गई। अरे भाई ये देखो, तुम्हारे मिजाज और तुम्हारी तुम्हारी जो तबीयत है, तुम्हारा जो मिजाज है, तुम्हारा जो टेम्परामेंट है, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है, तुम्हारे अपने जो टैलेंट तुम्हारे अंदर हैं, तुम चीज़ों को जिस तरह देखते जिस तरह समझते हो, उसके अंदर ये वाला प्रोफेशन उससे मैच करेगा या नहीं करेगा, ये तो देखो। नहीं, ये नहीं देख रहा। बस वो वैसे ही उसने किसी को देखा, किसी का इंटरव्यू पढ़ा, किसी से मिला, और इतनी जल्दी वो मुतासर हुआ, उसने कहा मैं भी यही बनूंगा। ये चीज़ ठीक नहीं है। तो अपने इंटरेस्ट पहचानिए। स्कोप जिसे हम कहते हैं ना, हर उस कैरियर का स्कोप है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस काम में आपके लिए बहुत स्कोप है, अदरवाइज कोई स्कोप नहीं है उसमें, अदरवाइज उसमें स्कोप नहीं है। आखिरी चीज जो कैरियर विजन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इंटरेस्ट के साथ, कि आप कुछ टाइम निकालिए इंटर्नशिप करने का, कुछ टाइम निकालिए वॉलंटियर वर्क करने का, कुछ टाइम निकालिए ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का जिन्होंने दुनिया देखी है। ऐसे इंसान को मेंटोर बनाइए जिसने दुनिया देखी है और दुनिया से मरूब नहीं है। ऐसा इंसान अगर आपको मिल जाए जिसने दुनिया बहुत देखी है, माल भी बहुत कमाया है, लेकिन दुनिया और माल को हकीर समझता है, ऐसा आदमी अगर आपको मिल जाए जिसने दुनिया देखी है और दुनिया को रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं देता, वो इंसान इस काबिल है कि उसको आप अपना मेंटोर बनाएं। खुदा ना खास्ता अगर आपने किसी ऐसे आदमी को अपना मेंटोर बना लिया जो दुनिया की मोहब्बत में और चीज़ों की मोहब्बत में और पैसे की मोहब्बत में गिरफ्तार है, तो आप गए। ऐसे आदमी से बचें। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। रब्बे करीम हमें और हमारी औलादों को और हमारे तलबा को हमारे वालदैन के लिए और हमारे असातज़ा के लिए सदक़ा जारिया बना दे, और हमारी औलादों को हमें अपने वालदैन और अपने असातज़ा कराम के लिए सदक़ा जारिया बना दे, और हमारी औलादों और हमारे तलबा को हमारे लिए सदक़ा जारिया बना दे। थैंक यू वेरी मच।
13-14 साल का बच्चा अगर वो कोई करियर की तरफ जाना चाहता है, पैशन है उसका, या उसकी राय पे उसे थोड़ा बहुत काम करने दिया जाए, या उसको इस लोग के साथ छोड़ दिया जाए, क्या अभी तो तुम्हारी उम्र है।
असल में होना ये चाहिए कि बच्चों की एजुकेशन में उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के मौके मिलें, और ये डिसीशन फाइनलाइज करना कि मेरे लिए कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी या कौन सा करियर मुझे जाना है, इससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हों, स्मॉल बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स हों, और जितने ऐसे प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशंस होंगे, स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बिजनेस के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उसने कुछ मैन्युफैक्चर करके बेचा, उसने कुछ ट्रेडिंग करके बेचा, उसने कुछ सर्विसेज अपनी ऑफर की, उसने किसी जगह पर जाके कुछ अरसे एक इंटर्नशिप किया, कोई काम किया, उसने किसी के साथ मिलकर कोई चीज़ बनाई, कहीं किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बना, ये वाले तजर्बात जितने ज़्यादा होंगे और एक्सपोजर उसे मिलेगा, तो फिर उसके बाद असल में ये फैसला करने के लिए उसको जितना डेटा चाहिए, जिसकी बेसिस पे एक इन्फॉर्म्ड और वाइज कंक्लूजन और ये वाला फैसला कि मुझे कौन सी फील्ड मेरे लिए बेहतर है और कौन सा करियर मैं जाऊं, उससे पहले का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट होने की ज़रूरत है। अब अगर आप 18 साल की उम्र में फैसला कर रहे हैं लेकिन उस 18 साल तक उसको एक्सपोजर नहीं दिया और ये सब नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एक बच्चा ऐसा है जिसको 15 साल की उम्र में इतना एक्सपोजर मिला है, उसने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और अब वो 15 साल के लेवल में इस लेवल ऑफ मैच्योरिटी पर आ गया है कि वो ये फैसला कर रहा है कि मैंने इतने सारी चीज़ें देखी, इतनी सारी फील्ड्स देखी, इतने सारे लोगों के साथ काम किया, आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूं कि मैंने ये सोचा है कि मैं लकड़ी का काम करूं और अपना वुडवर्क का एक बिज़नेस शुरू करूं, या मैं फार्मिंग करूं, या मैं दूध का काम करूं, या मैं कोई और काम करूं, या मैं कपड़ों का काम करूं, वो अपनी मर्ज़ी से, या मैं जॉब करूं और या मैं IT का काम करूं, जो भी उसने सोचा है वो अपनी मर्ज़ी से। और दूसरी बात ये कि हमें बच्चों को पुश नहीं करना चाहिए कि वो 15 साल या 16 साल की उम्र तक कोई फैसला कर लें। कैरियर का डिसीजन ऐसा है कि बच्चों को, वो बच्चा जो, पहली बात तो ये बच्चा खुद अपना टाइम ले। एक बच्चा इसमें हो सकता है कि 16-17 साल तक कोई चीज़ डिसाइड करे, हो सकता है कोई बच्चा 14 साल तक डिसाइड करे, कोई बच्चा हो सकता है 19 साल तक डिसाइड करे, हम जनरलाइज नहीं कर सकते कोई ख़ास एज। ये डिपेंड करता है बच्चे की पर्सनालिटी टाइप पर। एक बच्चे को ज़्यादा एक्सपोजर मिला है लेकिन वो एक बहुत डीप थिंकर है, वो ज़्यादा टाइम लेता है सोचने में, उसको फैसला करने के लिए ज़्यादा वो बहुत सेफ डिसीजन लेना चाहता है, ये उसका पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करें और हम उसको मौका दें। तो ये दो चार बातें। थैंक यू।